क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है, यहाँ पूर्ण पुरुषतम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है, वह अपने में पूर्ण है और अन्य पर आश्रित नहीं है। कौन किसका ऊपर आश्रित नहीं है? भगवान किसका ऊपर आश्रित नहीं है? वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव मतलब दर्शन से देखा जाता है, वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं को नियंता है, उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्मा का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है, अतः वह वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषतम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपने शक्ति से है ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु तथा जीवन शक्ति मतलब प्राण रहती है, इस प्रकार वह शरीर को बस में रखता है। अपने अंश रूप में भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है। तात्पर्य इसके पुष्टि भगवद गीता 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक में की गई है। सर्पस्य चाहम हृदिशा निवेष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहनम च। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित होता है। वह इस संसार को उत्पन्न करने वाले पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और वह महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश मात्र है। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार प्रकाश बलदेव है और वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अन्य विस्तार है। वासुदेव ही ब्रह्म ज्योति में मूल कारण है और वह ब्रह्म ज्योति वासुदेव के शरीर की किरणों का विस्तार प्रकाश है। जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटिषु शेष वसुधादि विभेति वेर्णम तद्ब्रह्म निष्कलम मन अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषस्तमः भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ जो परम शक्ति से समन्वित है। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा अनंत है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोक को उनके ऐश्वर्य सहित प्रदर्शित करता है। ब्रह्म संहिता का 5 अध्याय श्लोक 4 में बताया गया है। भगवद्गीता का 9:4 में पूर्ण पुरुषतम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थाने में सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। श्री कृष्ण के अंश रूप सर्वव्यापी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की यह स्थिति है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्रन मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। वंदे अहम श्री गुरु श्रीतपदकमलम श्री गुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदन सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग सभी को श्री श्री श्रीमद्भागवत कक्षा में प्रातःकालीन श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहला सूचना है आप लोग के पास मोबाइल, मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट में रख लीजिएगा, हर बार बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग को मालूम है कि नहीं है, ये जो रिकॉर्डिंग होता है ये सारा विश्व में जाता है, ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल का घंटी आ गया तो आपका नाम वहीं आ जाता है। और थोड़ी सी कृपा करके आगे का तरफ बैठेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, कोई ना कोई बाद में आते हैं पीछे बैठेंगे, पीछे वाला बैठ को आधा मिलता है, आगे वाले को पूरा मिलता है, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए ना। तब अभी जो श्लोक आप चल रही है, जो शीर्षक है जड़ भरत द्वारा राजा रहुगण की शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, हर दिन आप चर्चा हो रहा है, इसको ध्यान में लेना चाहिए, हृदय में ग्रहण करना चाहिए और जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो नहीं करना चाहिए, इसको प्रमिस करना चाहिए। बहुत सारे लोग को जब सुबह से माला दिया जाता है तो माला दे के मैं बताता हूँ आप लोग कितना माला करेंगे, तो कभी किसको दो बोलता हूँ, कभी किसको चार बोलता हूँ, तो बोलते हैं चार माला के लिए किसको पूछा जाता है तो बोलते हैं कोशिश करूँगा, ऐसा बोलता है कोशिश करूंगा। मैं उनको बोलता हूँ कोशिश नहीं प्रमिस, कभी कोशिश के लिए प्रयास नहीं करना, कोशिश नहीं करना, प्रमिस करना। वृंदावन धाम आयो, धाम से प्रमिस करके जाइए, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान मिलेंगे। भगवान भी प्रमिस किया है भगवद गीता में और वहां में कोशिश बोल रहा है। तो वह यही शिक्षा है यहां पे। जड़ भरत जी राजा रहुगण को बहुत सारा चीज शिक्षा दे रहा है, मतलब ट्रेनिंग चल रहा है उनका, हमारा जैसा अभी डिसाइपल कोर्स चलता है, इनका ट्रेनिंग। रहुगण को बहुत शिक्षा दिया, पहले तो मन के बारे में बताया, इसके बाद इंद्रिय के बारे में बताया, ये सारा चीज चर्चा होने के बाद है 12 नंबर श्लोक में क्षेत्रज्ञ शब्द जो आया वो जीवात्मा के लिए आया, जीवात्मा के बारे में समझाया। और आज का जो श्लोक है, श्लोक का शब्द आया क्षेत्रज्ञ, यह है परमात्मा के लिए। आत्मा और परमात्मा में क्या पार्थक्य है इसको समझना है, आज का श्लोक में ज्यादा चर्चा उसका ऊपर रहेगा। पहले से थोड़ी सी आपको ब्रीफ दे रहा हूं किस प्रकार रहुगण को जड़ भरत ने मन के बारे में शिक्षा दिया, मन को किस में लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए बोलिए, विषय भोग में लगाना चाहिए, मन को भगवान का भजन में लगाना, भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन एक ही प्रश्न सबको पूछता हूं, आप लोग को बहुत महान भक्त भी बैठे हैं, बहुत भी सुने होंगे, बहुत भी आप लोग को चर्चा किया होगा, इंद्रिय का पीछे मन है कि मन का पीछे इंद्रिय है बोलिए, ये बहुत क्रिटिकल है। मन का पीछे इंद्रिय, इंद्रिय का पीछे मन, गीता पढ़ा होगा तो मालूम पड़ेगा, बोल रहे इंद्रिय का अंदर मन है, ऐसा है क्या? इंद्रिय का राजा कौन है? मन है, सारा इंद्रिय का राजा है मन, इसलिए एकादश इंद्रिय, दस इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और मन राजा है, एकादश इंद्रिय कहते हैं। तब भगवद गीता का ऊपर का पिक्चर देखिए, ऊपर का जो फोटो चित्र है, तब सारा घोड़ा जो है इंद्रिय है और लगाम जो है वो क्या है, तब इंद्रिय के पीछे रहा कि आगे रहा, पीछे रहा ना। और ये लगाम किसका हाथ में दिया गया, भगवान कृष्ण के हाथ में। और उसी प्रकार हम करा मन को भगवान के हाथ में देना है, लेकिन हमें मन को अपना हमें अपना संजत नहीं कर सकते, भगवान के हाथ में देंगे तो भगवान कंट्रोलर। और ये मन कंट्रोल होने के लिए क्या चाहिए, सत्संग ही चाहिए, सत्संग से ही मन स्थिर होता है। इसलिए कहते हैं हर दिन भागवत सुनना चाहिए, डेली। भगवान भक्त के लिए काम करते हैं, भक्त भगवान के लिए काम करता है, कैसे समझोगे? ये देखिए बहुत रहस्यमय लीला है। ये ब्रज के अंदर एक साधु थे, प्रत्येक दिन किसी प्रकार भगवान स्वयं भक्त के लिए लीला करते हैं। हर दिन भागवत पढ़ते थे, डेली, प्रत्येक दिन भागवत नित्य नियमित है, पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, कोई बैठे नहीं बैठे, वो पढ़ना उनका नित्य नियमित है। तब एक दिन एक व्यक्ति आया, जब बाबा को पूछा आप भागवत पढ़ रहे हैं, किसको सुना रहे हो? बोला किसको सुना रहा हूं? मेरे प्रभु को सुना रहा हूं, मेरा अंदर में परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान, मैं उन्हीं को ही सिला रहा हूं। किसको सुना रहा हूं? प्रभु को ही सुना रहा हूं। अच्छा, तब एक दिन क्या हुआ, वृद्ध व्यक्ति अंधा हो गए और आग को दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तब उसी दिन पढ़ना बंद हो गया, पढ़ना बंद हो गया, और वो वृद्ध व्यक्ति रोने लगा, रो रो के चिल्ला रहा है। बोला प्रभु मेरे को क्या कर दिया, मैं आज भागवत नहीं पढ़ी पाई और प्रभु को क्या सुनाऊंगा, रो रहा है। तब भगवान तो परमात्मा रूप में अंतर्जामी रूप में समझ गए, तब प्रभु स्वयं ग्वाल बाल बन कर आए हैं, गोप बालक बन कर आए हैं और बाबा के सामने प्रकट हो गए। बोले बाबा क्यों रो रहे हो? बोला मैं हर दिन भागवत पढ़ के भगवान को सुनाता था और आज मेरा आँख को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अंधा बन चुका हूं, तब मेरे प्रभु को क्या सुनाऊंगा। तब जो गोप बालक, भगवान स्वयं गोप बालक बनकर आके स्वयं एक ही पट्टी दिए, बोले ये पट्टी को रात को आंख में बांध देना और सो जाना, सुबह ठीक हो जाएगा। तब बच्चे का जो कोमल वचन है, बाबा हृदय का स्पर्श हो गया, हृदय स्पर्श कथा। तब बोला ठीक है, छोटे बच्चा है और बच्चा का बात भी सत्य होता है। तब हृदय में स्पर्श करते हुए वो पट्टी उनका हाथ से लिया और वो आंख में बांध कर सो गया, और गोप बालक भगवान स्वयं वहां से पट्टी देके अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो बाबा ने पट्टी लगा के सो गया। दूसरा दिन सुबह उठता हुआ, उठने मात्र से चमत्कारी सरा दृश्यमान। तब बाबा का मन में विचार आया, छोटा बच्चा आकर क्या दिया था, ये पट्टी में क्या रहस्य है, ये पट्टी में क्या रहस्य है, जो कि मैं आकर जो मैं अंधा बन गया था, दृश्यमान हो गया, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तब पट्टी को देखता है खोल के, जब पट्टी खोल के देखता है उसमें लिखा हुआ राधे राधे, तब स्वयं प्रभु आते हैं भक्त का सेवा के लिए, भक्त का जो व्याकुलता है, उसी प्रकार हमें व्याकुलता में पुकारे भगवान को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य नियमित भागवत सुनना चाहिए। तब आज का श्लोक में इसी प्रकार, जब सत्संग नहीं करेंगे तब तक मन लगेगा नहीं। इसलिए कहते हैं बीस की कीड़ा ही बीस खाई, बीस का कीड़ा ही बीस खाई, मिश्री सुंगत मर ही जाई। जब तक सत्संग नहीं करेगा, जो बीस का कीड़ा है वो बीस खाएगा और मिश्री सुंगने मात्र से उसका मृत्यु हो जाता है। और उसी प्रकार जो विषय भोग करने वाले हैं, जो विषय भोग में रहते हैं, उनको विषय भोग ही अच्छा लगेगा, वो विषय भोग में रहेंगे, लेकिन सत्संग में आ गए तो बस समय नहीं है, ये है वो है, बस फलाना फलाना बोल के चला जाएंगे। सत्संग में ही आनंद है। तब आज का जो श्लोक है क्षेत्रज्ञ शब्द जो आया है, ये जो क्षेत्रज्ञ शब्द है ये परमात्मा के लिए आया है, इसलिए ये दोनों श्लोक में एक ही शब्द है, दोनों श्लोक में आया। बता सकते भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव का शरण में जाना है, ये वासुदेव श्लोक आया है। किस प्रकार अवतार होता है ये बताना चाहता हूं। और क्षेत्रज्ञ रूप में भगवान स्वयं आपका परमात्मा रूप में विराजमान है, और परमात्मा रूप में साक्षी रूप में रहते हैं। परमात्मा भगवान कृष्ण कुछ नहीं करते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग में प्रश्न आता है, जीव आत्मा इतना दुखी क्यों, दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि विषय भोग में पड़ा है। कहते हैं इस प्रकार परमात्मा है और जीवात्मा ऐसा है, ये हृदय में इसी प्रकार अवस्थान में है, वो भीतर का अंदर ही देखता है, विषय भोग में हमेशा रहता रहता है। जब तक ऊपर ऊर्ध्वमुखी नहीं होगा तब तक परमात्मा का साथ संलग्न नहीं होगा, परमात्मा के लिए कुछ नहीं करेगा, जीवात्मा विषय भोग में है तो इसी स्थिति में है, वो पूरा ऐसा दिशा में है। तब कहने का अर्थ है अवतार कैसा होता है, पहले कृष्ण आते हैं, कृष्ण बलराम सृष्टि होते हैं, कृष्ण के बाद बलराम, बलराम से कौन आता है, चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह कौन कौन है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, ठीक है, ये चतुर्व्यूह कहते हैं। और ये चतुर्व्यूह का बाद फिर नारायण आते हैं, तब नारायण का बाद फिर चतुर्व्यूह होता है, और नहीं नारायण का बाद है तीन पुरुष अवतार आते हैं। तीन पुरुष कौन है, कारण दशा विष्णु, खीर दशा विष्णु, गर्भ दशा विष्णु। तब ये जो तीन विष्णु है, ये तीन विष्णु का क्या क्या काम है, सभी का अलग अलग काम दिया गया कैटेगरी। गर्भदशाई विष्णु समष्टि ब्रह्मांड अंतर्गत पुरुष है, और उनसे ही ब्रह्मा आते हैं। गर्भदशाई विष्णु का नाभि कमल से ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा से सारा जीव जगत सृष्टि चलता है। क्षीरदशाई विष्णु प्रत्येक जीव का अंतर्जम के रूप में, प्रत्येक जीव का अंदर में परमात्मा रूप में है क्षीरदशाई विष्णु, और क्षीरदशाई विष्णु से ही सर्व अवतार आता है। जितने सब अवतार होता है सर्व अवतार क्षीरदशाई विष्णु से आता है। और कृष्ण के छह अवतार है, कृष्ण के छह अवतार क्या क्या है, एक पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनंतर अवतार, जुग अवतार, सत्यवेश अवतार, ये सब ये 24 अवतार को फिर कैटेगरी किया गया है। पुरुष अवतार तीन है और गुणावतार तीन है, गुणावतार तीन में कौन कौन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 14 है मनंतर अवतार, और 4 युग अवतार है, टोटल मिलाएंगे 24 अवतार। फिर इसका अंदर जो सत्यावेश अवतार में कौन कौन जाते हैं, नारद जी, कपिल जी, और पृथु और परशुराम, ये सब सत्यावेश अवतार में जाते हैं। तब जब ये क्षेत्रज्ञ के बारे में जड़ भरत महाराज रोहण को बता रहा है परमात्मा रूप में जो विराजमान है, यहां पे इनका कभी जन्म मृत्यु और बुढ़ापा व्याधि कभी सताता नहीं, लेकिन जीवात्मा का जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है। इसलिए कहते हैं जिसका जन्म हुआ, जन्म होने का नाते तीन चीज होगा ही होगा, जिसका भी जन्म हुआ उसका तीन चीज होना ही होना है। जन्म हो गया मतलब तीन चीज होगा, तीन चीज और क्या होगा, मृत्यु होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी होगा। इसलिए कम से कम ये जन्म से बचने के लिए, ये जो जन्म मृत्यु चक्र से बचने के लिए प्रभु का शरण पे जाना, यही जड़ भरत महाराज रोहगुण को बता रहा है, ये ज्ञान दे रहा है। और ये ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होगा, इसलिए कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान हम प्रत्येक दिन पढ़ते हैं गुरु पूजा में, चक्षु दाना दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान। और ये जो ज्ञान कृष्ण से ही आता है, गुरु मिडिल बनते हैं, गुरु मध्यस्थ बनते हैं, गुरु बीच में बन के वो जीवात्मा को शिक्षा देते हैं, तब। लेकिन परमात्मा रूप में जो प्रभु विराजमान है यहां पे, इसलिए भगवान को कहते हैं वह आत्म तेजस्वी है और उससे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी उसको सताते नहीं। और वो ब्रह्मादि समस्त देवता को नियंता है, और ये सारा जीव जगत का नियंता कौन है? भगवान। उनका निर्देश से सब कुछ चलता है। और वो है क्या है, कभी कभी हम लोग को बोलते हैं गॉड, जी ओ डी है कि नहीं, जी का एक शब्द निकला है, जी से क्या आता है, जेनेटर, ओ में ऑपरेटर और डी में डिस्टर। और इस सभी का कारण बनता है भगवान। इसलिए प्रभुपाद ने कभी गॉड कॉन्शियसनेस नहीं कहा, कोई किसी को भी ईश्वर मान सकता है, इसलिए प्रभुपाद ने बनाया कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी, इसलिए कृष्ण शब्द दिया। तब हमें भगवान को कैसा समझेंगे, प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण है, हजारे हजारे शास्त्र में, कोई भगवान को माने नहीं माने, शास्त्र शास्त्र का तो प्रमाण सत्य ही रहेगा। आप शास्त्र को माने नहीं माने, शास्त्र शास्त्र ही सत्य ही रहेगा। हर शास्त्र में बता गया भगवान है कौन, शास्त्र भाग श्रीमद भागवत में प्रमाण आता है, एते चांस कलाम पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोक मुढ़े अंति जुगे जुगे। प्रत्येक युग में भगवान आते हैं, और जो भी युग में भगवान आते हैं कुछ न कुछ लीला करने के लिए, और जो भी युग में आते हैं कौन सा लीला, भक्त को रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं परित्रणाय साधुना बिना सहज दुष्कृता, प्रत्येक युग में आता हूं लेकिन साधु को रक्षा करने के लिए। प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कुछ ना कुछ लीला करने के लिए। तब श्रीमद भागवत में फिर प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम पहला श्लोक, उसमें भगवान का एक शब्द आता है, एक शब्द भगवान के बारे में आता है, सौभिज्ञ सुरार जन्मादश्य जतो अनया आदि तरचो सौभिज्ञ सुरार, ये शब्द आता है। भगवान सौभिज्ञ है, संपूर्ण ज्ञान की आधार है, और भगवान ही जन्मदाता है, तब ये शब्द आता है। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं इनको एक ही एग्जाम्पल देना, जो व्यक्ति भगवान को निराकार मानता है इनको क्या आप लोग एग्जाम्पल देने से वो लोग समझ पाएंगे, जो व्यक्ति भगवान को निराकार बोलता है, भगवान शास्त्र में प्रमाण दे रहे मैं निराकार नहीं मैं साकार हूं, और कुछ लोग बोलते हैं निराकार है, कैसा आप उनको समझाएंगे? एक छोटी से बाह्य जगत का एक एग्जाम्पल उनको देने से समझ पाएंगे। क्या बाह्य जगत का क्या एग्जाम्पल देना है उनको, बिना पिता से पुत्र हो सकता है, बिना पिता से पुत्र हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तब उसका पिता कोई है। तब उसी प्रकार हम बाई चांस हमें पुत्र है तब हमारा पिता कोई है, ये समझाना है। बिना पिता का नाम से आपका आईडी बन नहीं सकता है, आप कोई भी आईडी बनाते हो उसमें क्या चाहिए, पिता का नाम। माता का नाम किसी भी जगह पे मेंशन नहीं, अहम बीजपद पिता है, भगवद गीता में बताए अहम बीजपद पिता है, तब भगवान का नाम। तब उसी प्रकार आपका आईडी बनने के लिए आपका पिता का नाम दिया जाता है, और यहां पे वही है, भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं, इसलिए कहते हैं सौभिज्ञ सुरार। फिर कहते हैं अद्वैय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे तार हय अवस्थान, चैतन्य चरितामृत कहते हैं अद्वैय ज्ञान तत्व को देने वाले कृष्ण स्वयं भगवान है, और स्वरूप शक्ति को स्वरूप शक्ति के अवस्थान है भगवान। फिर ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारणम कारण। कौन सा मूर्ख है जो कि भगवान को नहीं मानेगा, ये प्रमाण दिया जाता है भगवान ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, सत और चित और आनंदमय ज्ञानमय है, सत है और चित मतलब ज्ञानमय और आनंदमय भी है। फिर कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान अनंत वैकुंठार अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांडे यहा सवार आधार सचिदानंद तनु श्री ब्रजेन्द्र नंदन सर्वैश्वर्य सर्व शक्ति सर्वरस पूर्ण। ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान और सर्व अवतारी, इसलिए भगवान कृष्ण को अवतारी कहा गया। यहां पे दो शब्द आता है, इसको कैसा आप समझेंगे? गीता में भगवान कहते मैं अजन्मा हूं, गीता में फिर भी श्लोक आता है भगवान जन्मा है, यही है। इसी रहस्य को समझने के लिए ये भौतिक जगत में, भौतिक इंद्रिय में, जड़ इंद्रिय में चिन्मय वस्तु को समझना आसानी नहीं है, ये मेन पॉइंट है। प्राकृत इंद्रिय में अप्राकृतिक वस्तु को कैसा समझोगे? भगवान एक ही श्लोक में बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूं, और एक ही श्लोक में कह रहे मैं जन्मा हूं। कहते हैं ना भगवद गीता का 4 अध्याय 9 नंबर श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो व्यति तत्व तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतिमामिति सो अर्जुन। भगवान ये श्लोक में बोलते मैं जन्म हूं, और दूसरा एक श्लोक में बोलते मैं अजन्मा हूं। 4 अध्याय 6 नंबर श्लोक में वही गीता में 4:6 में कहते हैं अजोपि सन व्यात्मा मैं अजन्मा हूं। लेकिन हमारा बुद्धि से ये बाहर है, हमें जो जड़ इंद्रिय में हमें ये बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं भगवान का जो लीला रहस्य को। हमें सोचते हैं हमें जिस प्रकार माँ का कुखी में आए हैं, टट्टी पिशाब का अंदर रही के थला में रहे थे, उसी प्रकार भगवान आते हैं क्या? भगवान का जन्म ही दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है। उससे समझने के लिए आपका दिव्य दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए, तब जाके आप दिव्यात्मा को समझ सकते हैं, दिव्य दर्शन कर सकते हैं भगवान, तब समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। जड़ इंद्रिय में क्या दर्शन कर सकते हैं? अभी जैसा लोग वृंदावन आते हैं, ट्रेन भर भर के आ रहा है, बस भर भर के आ रहा है, टिकट भी नहीं मिल रहा है, भर भर के आ रहा है, कुछ लेके तो घूमने के लिए आते हैं, कुछ लोग चक्कर कटने में आते हैं। अरे भगवान स्वयं जो जिस धरती पे भगवान स्वयं लीला कर रहा है, प्रत्येक दिन लीला कर रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे। आपको एक छोटी से अभी का लीला बता रहा हूं, ये वृंदावन का नहीं, ये जगन्नाथपुरी का आप बता रहा हूं। आज का डेट में क्या लीला हुआ? 3 दिन हो गया जगन्नाथ के पास अभी भोग नहीं लग पा रहा है, 3 दिन हो गया। गवर्नमेंट कुछ रूल किया है और रूल को भगवान ने तोड़ दिया। गवर्नमेंट क्या रूल बनाएगा जगन्नाथ का सामने? उनका रूल था अभी का, 3 दिन का घटना है, हाईकोर्ट ने नियम बनाया जो कि जिसका सेवा है वही जाना है गर्भगृह में, इसका व्यतीत और कोई नहीं जाना है, ये रूल बनाया। तब तो सुअर लोग भोग बनाकर रखे हैं, भोग बनाया लेकिन भोग नहीं लगा सकते, सुअर भोग नहीं लगा सकते, बनाएंगे सिर्फ उनका सेवा है। जिन्होंने भोग लगाना है, जिनका उसी दिन सेवा था, उसी दिन क्या हुआ, हाईकोर्ट तो ऑर्डर दिया और उसी दिन वो सेवक का मम्मी मर गई, उसी दिन उसका मां ने मर गई, और वो सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी दिन जितने से वो भोग रोसोशाला में रोसई करके रखे थे, उसको कोयली वैकुंठपुर में गाढ़ा खोद करके पोतने लगे। लगभग पर डे 50 लाख रुपया का सामान बनता है। सेवा लोग अभी मंदिर का सामने स्ट्राइक करके बैठ रहे हैं, जितने सुवार लोग हैं, जितना रोसई करने वाले हैं, सब बैठे हैं अभी तक भी। फिर एक ही सर्वेंट का मां मर गई, लेकिन दूसरा सर्वेंट भी था, मतलब जो पूजा करने वाले, लेकिन उसको क्या हुआ, उसी दिन उल्टी, उसका संपूर्ण मतलब ये हो चुका है, क्या हो चुका है, टट्टी पिशाब, लूज मौसम। तो भगवान पूरा बोले यहां पे कभी भी गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा, यहां पे मेरा रूल चलेगा। भगवान स्वयं लीला दिखा रहा है, जगन्नाथ स्वयं सख्यत विराजमान है जहां पे रत्न सिंहासन पर। ये एक ही नहीं, फिर इसका एक ही हफ्ता का पहले भी लीला किए, जगन्नाथ मंदिर का ऊपर कभी भी चिड़िया नहीं उड़ता है, जगन्नाथ का मंदिर का ऊपर जो झंडा उड़ता है एक दिन एक ही, क्योंकि इसका पहले गवर्नमेंट का रूल था जो कि उसका गोल्ड का खर्च सब गिनती किया जाएगा, कितने गोल्ड उसका अंदर है, मतलब जगन्नाथ मंदिर का अंदर है, इसका कोई भी हिसाब किताब आज तक नहीं दे पाया, नहीं के दे पाएगा। तब गवर्नमेंट बनाया, कुछ लोग को भेजा उसका गोल्ड को हिसाब किताब लाने के लिए, लेकिन उसका दो दिन का पहले एक ईगल आई, ये खराब सूचक देने के लिए एक ईगल आई, ऊपर का जो झंडा है तोड़कर लेकर उड़ गया, पहला सूचक दिया। दूसरा सूचक फिर जिसी दिन गवर्नमेंट ने रूल बनाया और चार लोग अंदर गए गोल्ड को देख के गिनती करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, और वो व्यक्ति का पैर में चोट लग गई, खून निकालने लगा, तब फिर ताला पूरा बंद, क्योंकि जगन्नाथ संपन्न लीला प्रत्येक दिन लीला करने में, और इसी प्रकार वृंदावन धाम में प्रत्येक दिन लीला चलता है, लेकिन हमारा ये प्राकृत इंद्रिय से हमें अप्राकृत वस्तु को नहीं दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे वही है, कहते हैं भगवान सड़क ऐश्वर्यपूर्ण है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से जस से श्री ज्ञान वैराग्य सभ्य शरणा भगई तिंग, भगवान सड़क ऐश्वर्य में पूर्ण है। जार भगवता हईते अन्य भगवता स्वयं भगवान शब्द रता तेईसता, जिनकी भगवता से अन्य स्वरूप की भगवता प्रकाशित होती है वे स्वयं भगवान शब्द से बाच्य है। भगवान को दर्शन करना है तब दिव्य चक्षु हमको चाहिए, इसलिए अर्जुन के साथ होते हुए भगवान को दर्शन नहीं कर पाए, तब भगवान जब दिव्य दृष्टि दिया तब उन्होंने भगवान को दर्शन कर पाए, उसी प्रकार स्थिति। तब इसी यहाँ पे जड़वर तो वही समझा रहा है परमात्मा का बारे में, आपका हृदय में आपको भगवान दर्शन करना है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज तपस्या करने में बैठ गए लेकिन परमात्मा रूप में तो प्रभु विराजमान थे, वो अंतर्दृष्टि में गुरु ने आदेश दिया मंत्र जप करो, लेकिन दृढ़ता का साथ ध्रुव महाराज कितना भी समझा गया लेकिन अपना दृढ़ता से हटी नहीं, जाके एक आसन लगा के बैठ गए, दृढ़ता के साथ भजन करने लगा, लेकिन गुरु का आदेश को हृदय में धारण करना है। तो वह नारद जी गुरु थे, नारद जी तो उद्धार कर सकते थे ध्रुव महाराज को, लेकिन ध्रुव महाराज अपना दृढ़ता से हटाना है, मैं भगवान को प्राप्त करना है, मेरा भगवान सामने में आना है, मैं भगवान को दर्शन करके जाना है, ये दृढ़ता हमारा होना चाहिए, तो भगवान आएंगे ही आएंगे। तो उसी प्रकार जब ध्रुव महाराज दृढ़ता के साथ भजन करने लगे तो भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हुए, पहले तो इंटरनल में उन्होंने दर्शन किया परमात्मा रूप में, प्रभु को पहले दर्शन किया अंदर में, लेकिन उसी टाइम में आंख बंद था, तब जब आंख खोला तो भगवान साक्षात सामने में प्रकट होते हैं चतुर्भुज नारायण के रूप में, और शंख का स्पर्श कराते हैं उनका सिर पे, ध्रुव महाराज का सिर पे जब शंख स्पर्श होता है ध्रुव महाराज का अंदर ज्ञान प्रकट होने लगता है, ये दिव्य है, भगवान का दिव्य आयुध था जो कि शंख। तब वही ज्ञान जड़ भरत जो आत्म मतलब तत्वदर्शी है उनसे ज्ञान मिल रहा है, किसको मिल रहा है, रहुगुण को, रहुगुण की शिक्षा मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा का कभी विनाश नहीं, परमात्मा को जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि सताती नहीं, और प्रभु सिर्फ साक्षी का रूप में रहते हैं, प्रभु कुछ नहीं करते साक्षी का रूप में, जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया जाता है लेकिन ये थोड़ी सी स्वतंत्रता को व्यक्ति बहुत बड़ा मानता है, इसलिए तो दुख मिलता है, दुख का कारण इसीलिए है, हाँ जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता दिया जाता है, ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थोड़ी से, लेकिन यो स्वतंत्रता को वो बड़ा मानता है, बोलता है मैं मालिक बन गया, मेरा सारा संपत्ति है, तब कहते हैं एक व्यक्ति एक बार प्रश्न पूछा था, एक व्यक्ति प्रश्न पूछा, बोला कृष्ण को कैसे समझेंगे, एक ही प्रश्न, कृष्ण को कैसे समझोगे, इसका उत्तर में ये दिया जाता है, जब आप कृष्ण हमारे पति है, कृष्ण हमारा गति है, कृष्ण उसमें लगाओ मति है, ताकि हृदय में उत्पन्न रति है, तब कृष्ण को प्राप्त करोगे। कृष्ण हमारे पति है, कृष्ण हमारे गति है, और उनमें लगाओ मति, ताकि हृदय में उत्पन्न होती रति है। कृष्ण चंद्र भगवान की, जब इसी प्रकार होता है तब कहते हैं परमात्मा राजा है और जीवात्मा प्रजा है। इसमें थोड़ी से बताया जा रहा हूं, ये लास्ट है दो मिनट के लिए, ये बहुत बड़ा कहानी है, मतलब किस प्रकार राजा को दुख नहीं मिलता है, प्रजा दुख भोगता है। आगे चलकर उनमें से एक तो राजा हुआ और दूसरा कुसंग में पड़कर हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोंक, ऊपर से पहर में चौकीदार, इस प्रकार कैद में पड़ गया, महाकष्ट में पड़ा। वह मित्र अपनी मुक्ति के संबंध में विचार करते करते उसने मन में निश्चय किया कि संकट में मित्र ही सहायक होते हैं। जब संकट पड़ता है तो मित्र के पास जाते हैं, यथा विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, तो मेरा मित्र राजा है, समर्थ है, उसे अपनी स्थिति निवेदन करनी चाहिए। फिर तो उसने अपने राजा मित्र के पास अपना हाल कह पठाया। तब राजा ने कहा कि यदि वो मेरे पास आ जावे तो छुड़ा दूं। कैसा मधुर जवाब है, न तो वह राजा के पास जा सकता है, न बंधन से छूट सकता है। दृष्टांत में जीवात्मा और परमात्मा के दो मित्र है, जथा द्वा सुपर्णा सुजजा सखाया, परमात्मा राजा है और जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ है, नाना कष्ट भोग रहा है। इसलिए जीव जबते हरिते बिलगाध्य तब ते देह गेहनीय जन्य, माया बस स्वरूपा विसरायो ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो, तहां गृह बंधन की बेड़ी है। ये संसार क्या है, गृह बंधन की बेड़ी है, और स्त्री पुत्र स्नेह की हाथ कड़ी है, जो स्त्री पुत्र है वो हाथ का कड़ी है, धन आदि का मोह की तांक है, जो धन संपत्ति है मोह का तांक है, और शब्द रूप रस गंध पांच विषय जबरदस्त चौकीदार है। इस प्रकार के परवश बंधन में पड़ा हुआ स्वयं छूटने से असमर्थ, गीता में कहते हैं दैवी हस्या गुणमयी मम माया दुरतया, ये गीता का श्लोक है 7:14 श्लोक में। तो वो बारंबार विनती करती रहता है, व्यक्ति विनती करता है मुझे बंधन से छुटाओ, बंधन से छुटाओ, बंधन से छुटाओ। भगवान क्या वचन देते हैं, वही गीता में भगवान फिर वचन देते हैं, क्या वचन देते हैं, भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण ले लो, तुम मेरी शरण ले लो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप मेरा शरण ले लो। और ये शरण लेने के लिए क्या चाहिए, सत्संग ही चाहिए, सत्संग से पता लगता है किसका शरण में जाना है। तब भगवान का शरण में आने मात्र से भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मुखे समीम आशुच, आपको मैं मुक्ति दिलाता हूं जब आप मेरा शरण में आते हो। इसलिए यहाँ पे यही वर्णन करते हैं, हमें भगवान का शरण पे जाके भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। वंशा कल्प दुर्भेश कृपा सिंधु भेवच, पतितान पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।